दौला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 11 ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम नमः सिद्धेव्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्षायाणं नमो लोए सौवसाहूणं अन्ताय मच्छहीनं दसद्दसय चावदीहिरं पडमजिनं वोच्छं नमिऊणन्तरम् अनन्तरुत्तुङ्गसन्नमयि दुर्गेजम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें प्रथम खंड है जीवस्थान नामक, उसमें अपना विषय अंतरानुगम का, और ये पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 106 पर आ गए हम। 106 देखो, हम यहाँ 206 नंबर का हो गया अपना। नपुसक वेदी की बात चल रही थी, वेद मार्गणा में नपुसक वेदियों में अभी हम गुणस्थान लगाएंगे। तो मनीषा बेन, नपुसक वेदियों में गुणस्थान कहाँ से कहाँ तक है? आप क्या कहते ब्रह्मा? 1-9 तक। कल ही हमने बात देखी थी, द्रव्य से जो पुरुष है, भाव से भले नपुसक हो, स्त्री हो, तो भी वो क्षपक श्रेणी चढ़कर मोक्ष भी जा सकता है। 9वें गुणस्थान तक वेद का उदय है। वेद का उदय ने वो कर्मों का उदय है, उसकी बात बताई। अब यहाँ पढ़ते हम, 9 वेदेषु मिच्छादिक्षिणम अंतरम केवशिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्छन अथ्य अंतरम निरंतरम। नपुसक वेदियों में मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। तो नपुसक वेदी कौन कौन से गति में पाए जाएंगे? नपुसक वेद सा विक्रिया से क्या संबंध है? और नारकी तो सारे नपुसक वेदी ही होते हैं, नारकी देवगति में नहीं। जैसे स्त्री वेद पुरुष वेद के लिए हम नरक गति नहीं है कहते, ऐसे नपुसक वेद के लिए देवगति नहीं है। यह सूत्र सुगम है। पृष्ठ संख्या 107 पर आ गए अभी हम। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतो मुहूर्तम। एक जीव की अपेक्षा नपुसक वेदी मिथ्या दृष्टियों का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। ये बहुत बार देखा था, अन्य गुणस्थान को जाके लौटेगा तो उसका अंतर होगा, और नाना जीवों की अपेक्षा तो अंतर ही नहीं है। तो हमने पहले देखा था, अभी एक जीव की अपेक्षा बात है नहीं, तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त। यह सूत्र भी सुगम है। उक्कसेन 33 सागरोपमानी देशुनानी। एक जीव की अपेक्षा नपुसक वेदी मिथ्या दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरूपम है। मिथ्या दृष्टि का अंतर का अर्थ है मिथ्या तो में से सम्यक तो प्राप्त किया और लगातार सम्यक तो में रहना चाहिए। सम्यक तो से मिथ्या तो लाने पर वो बात अलग होती है। यहाँ पृष्ठ संख्या 107 पर बात चल रही है। 209 नंबर का सूत्र पढ़ा था, एक जीव की अपेक्षा नपुसक वेदी मिथ्या दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरूपम है। यानी उसको नपुसक वेदी रखना है थ्रू आउट। मिथ्यात्व का अंतर यानी सम्यक्त्व प्राप्त किया, लगातार सम्यक्त्व में रहा और वापस मिथ्यात्व में आया। अब हम जब पुरुष विधि में देखा था अंतर मिथ्यात्व का, तो कितना देखा था याद है? पुरुष वेदी में मिथ्यात्व का अंतर, सम्यक तो प्राप्त कराओ, लगातार सम्यक तो में रखो, बीच में हमने सम्यक मिथ्यात्व में भी लाया था। हाँ, 266 सागर, कुछ कम साधिक नहीं लेना, एक अंतर्मुख कम लेना। नपुसक वेद में ऐसा नहीं, वहाँ सम्य दृष्टि है तो लगातार पुरुष वेद में रहता है, क्योंकि सम्य दृष्टि मरकर पुरुष वेद में जन्मता है, तो वहाँ तो ये पॉसिबल थी बात। नपुसक वेदी सम्य दृष्टि भले नारकी छठे नरक का नारकी भी हो, सम्य दृष्टि रहा इतना, अंतर्मुख कम 22 सागर, फिर भी जाते समय वो पुरुष वेदी होकर निकलेगा, वहां से मनुष्य में आएगा। अब यहाँ क्या करना है, उसको नपुसक वेद में रखना है तो एक ही भाव लेना, जैसे हमने स्त्री वेद में वो 55 पल्ले वाला लिया था, ऐसे यहाँ लेना है। सातवें नरक का लेना, वहां मिथ्या तुम्हें उत्पन्न हुआ, सम्यक तो प्राप्त किया, थोड़ा और सम्यक दृष्टि रहा, अंत में जाके मिथ्या तुम्हें गया, फिर आयु बांधी वगैरह वगैरह। तो अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, देखो कुछ कम 33 तो कह दिया उन्होंने, वो कैसे है वो हमने अभी देखना है। यहाँ से जैसे मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव सातवीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक्त को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी तीन अंतर्मुख के बाद सम्यक्त प्राप्त किया तो मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया। आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त होकर, यानी वो मिथ्यात्व में जाके अंतर्मुख रुकेगा, फिर आयु का बंद करेगा, उसके लिए एक अंतर्मुख, फिर बंद करते मरेगा नहीं तो और विश्राम लेगा, यानी विश्राम लेने का अर्थ है उसके बाद वो मरेगा नहीं अंतर्मुख तक, वो अंतर्मुख फिर मरा और तिर्यंच हुआ, क्योंकि वो नियम से तिर्यंच में जा रहा है। इस प्रकार छह अंतर्मुखों से कम 33 सागरोपम काल नपुसक वेदी मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है। अब जैसे यहाँ नपुसक वेद में कौन से वेद से आया और कहाँ चला गया ये कोई कंडीशन नहीं डाली थी, परंतु वह स्त्री वेदी में डाली थी उन्होंने, नहीं उसका कुछ विशेष कारण होगा। शासन सम्मादिट्ठी पौड़ी जा क्यों, वो तो उसका नपुसक वेद तो वो समूर्चन तिरंग आया तो भी नपुसक वेद ही था, परंतु सम्यक तो प्राप्त करा तब मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया। शासन सम्मादिट्ठी पहुड़ी जाव अनियट्ठी व सामगोत्ती मूलोगम, शासाधन सम्य दृष्टि से लेकर अनिवृत्तिकरण उपशाम गुणस्थान तक नपुसक वेदी जीवों का अंतर मूलोक के समान है, क्योंकि 108 पृष्ठ पर आए नपुसक वेदी सासाधन समय दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग है। ये जो हमने ओग में भी ऐसा ही देखा था, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग, क्योंकि दोबारा प्रथम उपशम करेगा तब सासाधन में आ जाएगा, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। देखो नपुसक वेद में तो घटित होगा, अन्यत्र कहीं घटित नहीं होगा, क्योंकि पुरुष वेदी स्त्री वेदी की तो उसकी लिमिट है, ये थ्रू आउट एकेंद्रीय में रहा तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल घटित हो जाता। सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। देखो इन्हें जिस पहले भाव में उसने प्राप्त किया था समय को, वो भी नपुसक वेदी था, फिर वो कालांतर एकेंद्रीय में गया और अर्ध पुद्गल परिवर्तन के बाद भी नपुसक वेदी मनुष्य होकर जन्मा और उसी में मोक्ष जाएगा। क्योंकि इतना अंतर हमने घटित किया ना, फिर हाँ कुछ कम अर्थ बुद्ध गया। असंयत समय दृष्टि का नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि नपुसक वेद में हमेशा कोई ना कोई समय दृष्टि तो पाई जाए, तीनों वेद वालों में पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुख, अन्य गुण स्थान को जाकर वापस आया, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, जैसे हमने अभी देखा था समय मिथ्या दृष्टि का सासाधन का, वैसे यहाँ पर भी ले। हाँ देव नहीं होगा, हाँ संयता संयत का यानी समय दर्शन प्राप्त हुआ एक बार और फिर कभी देव ही नहीं हुआ और फिर मोक्ष चला गया ऐसा लेना। देव क्या वो स्त्री पुरुष में भी ये नहीं गया, संयता संयत का नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि पांचवे गुणस्थान में हमेशा कोई ना कोई जीव नपुसक वेदी भी पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा हमने देखा ना, वो तो समूर्छन कितने महामत्स्य असंख्यात होते हैं पांचवे गुणस्थान वर्ती, यह मनुष्यों में भी हो गए अन्य भी कर्मभूमि के तीलियन से। संहिता संहित का नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुख, अन्य गुणस्थान को जाके वापस लौटा, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी पहले भव में उसने पांचवा पाया था, बाद में आयु बांध के बाद में वो तो भटका और अंत में जाके अर्ध पुद्गल परिवर्तन के बाद मनुष्य हुआ नपुसक वेदी, पांचवा गुणस्थान प्राप्त किया। उसके पहले वो सब क्षायिक वगैरह करना, फिर पांचवे के बाद वो मुनि होकर मोक्ष चला गया। प्रमत्त संयत का नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मुख, सातवें में जाके लौटा, और उत्कर्ष से कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अप्रमत्त संयत का नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मुख, और उत्कर्ष से कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यानी मुनिराजों में भी वो नपुसक वेदी भी हमेशा ही पाए जाएंगे, इसका अर्थ होता है ना अंतर नहीं है का, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है। अपूर्व करण का नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय, और उत्कर्ष से वर्ष पृथक हुआ, तथा एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अंतर्मूर्त, और उत्कर्ष से कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर है। अब यहाँ उतरते हुए वाला लेना आठवा, मरना नहीं, यहाँ मरने की अपेक्षा लेना ही नहीं। देखो अर्ध पुद्गल परिवर्तन कैसे होगा, देखो नपुसक वेद वाला था, अभी वो तो मनुष्य थे, मनुष्य थे उल्टे यानी श्रेणी उतरी तब आठवें में आए, आठवें से सातवें में आते अंतर चालू हो गया, फिर उसी भाव में मिथ्या तो में जाके आयु बांधी, अर्ध पुद्गल यानी फिर एक आदि में जाकर अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद फिर मनुष्य हुआ, मनुष्य हुए और संयमी हुए। हाँ और जब वो श्रेणी चढ़ते समय अभी उसको अगर अर्ध पुद्गल परावर्तन हमने दिया है, अभी तो उसको देव में नहीं भेज सकते, तो अभी क्षपक श्रेणी चढ़ानी पड़ेगी। कृतकृत्य वेदक कहने की जरूरत नहीं, पहले उसने क्षायिक कर दिया, बाद में वो तो श्रेणी चढ़े, अंतर समाप्त हुआ क्योंकि क्षपक ही मोक्ष थे, क्योंकि बाद वाला अंतर कम करना है ना, बाद वाला काल कम करना है तो बीच वाला अंतर बढ़ेगा, यानी यहाँ हमको क्षपक श्रेणी चढ़ानी पड़ेगी। त्रिवेदी में हमने उसको वहाँ मरकर देव में भेजा था, उसके स्त्री पर्याय का वहाँ तक होकर। हाँ, क्योंकि उसका अंतर्मुख छोटा है, वो अपूर्वकरण का केवल एक अंतर्मुख लेना है। पुरुष वेद में ऐसा नहीं लिखते, देव में भी गया तो भी पुरुष वेद ही रहेगा। ख्याल में है बात? देखो, निकालो स्त्री वेदी में और पुरुष वेदी में। पुरुष वेदी में पंचेंद्री के समान यानी वो उसको शपक श्रेणी चढ़ाई थी। स्त्री वेदी में देखो, मैं आपको बताती हूँ, पेज नंबर निकालो 100 के आगे पहले। हाँ, पेज नंबर 99 और 100, त्रिवेदी की बात मैं पढ़ रही हूँ। 99 देखो, लास्ट दो लाइन देखो ना, त्रिवेद की स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर, अंत में संयम को प्राप्त हो, वो कृतकृत्य होकर अपूर्वकरण उपशामक हुआ, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। पीछे निद्रा प्रश्ला के बंधे विच्छेद हो जाने पर मरा और देव हुआ। यहाँ तो उसके मरकर देव बनाया, क्योंकि स्त्रीवेद को स्त्रीवेद में केवल स्त्रीवेद का काल गिनना था, यह हमको अर्धपुद्गल गिनना है। वहाँ पुरुषवेद में भी मरकर तो पुरुषवेद ही रहेगा, वहाँ पर भी हमने वहाँ पुरुषवेद का मैक्सिमम काल गिनना है, तो उसको भी मोक्ष भेजना पड़ेगा, तो उसको भी मोक्ष यानी बाद में शपक श्रेणी चढ़ाना है। और यहाँ पर नपुसक वेदी में भी शपक श्रेणी चढ़ाना है। हेल में है ना बात? काल बाद का काल बढ़ जाएगा, यानी आठवें गुणस्थान का एक ही भाग होकर मरे तो वो बाद में अंतर का यानी बाद का एक छोटा ही अंतर मुतरे गया। और अगर शपक श्रेणी चढ़ाते तो पूरा आठवां नौवां दसवां बारवां तेरवां चौदवां ये अंतर मुत बन। हाँ, इसका अर्ध पुत्र। हाँ, और पुरुष वेद में भी, पुरुष वेद में मरे तो पुरुष वेद में ही रहेगा, इसलिए उसका भी पूर्ण काल नहीं ले सकते। तो तीनों में अलग अलग अपेक्षा बताए। त्रिवेदी में नहीं चढ़ाई, त्रिवेदी में उपशम औपशमिक उपशम श्रेणी प्राप्त करा। देख, वहाँ इसलिए कि वहाँ उसका स्त्रीवेद मिटकर पुरुषवेदी हो जाएगा। ख्याल में है ना बात? तीनों में डिफरेंस है। पुरुषवेदी में इसलिए शपक श्रेणी चढ़ाई कि उसका पुरुषवेद का काल अभी हमने शतसागर सौ सागर पृथक कंप्लीट हुआ है। अभी अगर उसको मरण भी लेते हैं तो उसका पुरुषवेद फिर देव में आएगा, तो वो काल तो हमने पूरा यूज किया है, तभी उसको मोक्ष भेजना है। आप कहेंगे नपुंसक वेदी में भी ऐसा करो ना, स्त्रीवेद जैसा उसको पुरुषवेद में भेज दो, तो कहते उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल बढ़ जाएगा, एक देव का भव और फिर मनुष्य का भव करके मुख जाना पड़ेगा। यानी कितना सोचना पड़ता है ना। हाँ, इसी प्रकार अनिवृत्तिकरण का भी अंतर जानना चाहिए। अपने 108 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन, इन उक्त जीवों का उक्त जघन्य और उत्कृष्ट अंतरों की अपेक्षा ओग से कोई भेद नहीं है। यानी नपुंसक वेद में जो अर्धपुद्गल घटित किया ओग में भी ऐसा ही करते हैं। 109 दौन्नम खवाणम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्ने ने एक समय। नपुंसक वेदी अपूर्वकरण संयत और अनिवृत्तिकरण संयत, इन दोनों क्षपकों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। इन नपुंसक वेद सहित श्रेणी चढ़ने वाले लिए क्षपक की बात। उक्त दोनों नपुसक वेदी हाँ ऊपर पढ़ना उपकस्यन वासपुधत्तम उक्त दोनों नपुसक वेदी क्षपकों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक है, जैसे हमने स्त्री वेदी में देखा था वैसे यहाँ पर लेना, क्योंकि यह अप्रशस्त वेद है और अप्रशस्त वेद से क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव बहुत नहीं होते। क्षपक पांच देखे थे ना हमने और उपशामक 10 देखे थे, वहां स्त्री वेदी में कितने 10 और 20 देखे थे ना, वहां पर भी उन्होंने यही बात बताई थी। वर्ष पृथक थोड़ा बड़ा होगा, स्त्री वेदी से भी ज्यादा बड़ा, उन कहेंगे वर्ष पृथक तो उसमें आगे बढ़ते हैं। अभी एक जीवम पड़ुच्चन अथ्य अंतरम निरंतरम उक्त दोनों नपुसक वेदी क्षपकों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है निरंतर है, क्योंकि क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव वापस लौटकर आने का सवाल नहीं। यह सूत्र सुगम है, हमने तीनों वेद वाले देखे, अभी अपगत वेदियों में देखेंगे। अपगत वेदियों में अनिवृत्तिकरण उपशामक और सूक्ष्म सांप्राय उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, सूत्र रह गया। बहुत अच्छा। अवगत वेदेशु अनियठी उवसम सुम उवसमानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जघन्येन एक समयम। अपगत वेदियों में अनिवृत्तिकरण उपशामक और सूक्ष्म सांप्राय उपशामकों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। अभी देखो ये जो भी वेदों का उदय मिट गया और सारे अभी अपगत वेदी हो गए, तो अपगत वेदी होकर ही ऊपर चढ़ना है उनको, तो जो श्रेणी में जो अंतर कहते वही यहाँ कर कहेंगे जघन्य से एक समय कहेंगे। जघन्य से एक समय अंतर है, यह सूत्र सुगम है। उपकस्यन वासपुधत्तम, अभी उपशम श्रेणी का ही अंतर वर्ष पृथक्त्व देखा था हमने। उक्त दोनों अपगत वेदी उपशामकों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, क्योंकि ये दोनों उपशामक गुणस्थानक है और ओग में उपशामकों का इतना ही उत्कृष्ट अंतर बतलाया गया है। किसी भी वेद से चढ़े ना वो अपगत वेदी तो होने ही वाले हैं, तो उपशम श्रेणी का अंतर ही इनका अंतर कहेंगे हम, अपगत वेदियों का अंतर। एक जीवम पड़ुच्च जहन्येन अंतोमुहूर्तम, उक्त दोनों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर मुहूर्त है, यानी 90 का अंतर कैसा कहेंगे, 10वां 11वां फिर 10वां और 10वें का अंतर केवल 11वां। क्या दोबारा श्रेणी चढ़ सकते हैं, ये ले सकते हैं हम, 11वें का अंतर होगा कि नहीं होगा, एक जीव की अपेक्षा 11वें का जघन्य अंतर कितना होगा, तो फिर वेद वाला हो जाएगा। इसीलिए पूछा मैंने, अपगत वेदी रहे 9वें 10वें का अंतर घटित होगा, 11वें का कैसे घटित होगा, एक जीव की अपेक्षा 11वें का अंतर कैसे होगा, क्योंकि अपगत वेद में से वेद वाला हो जाएगा, 9वें 10वें के चढ़ने वाले और उतरने वाला, अपगत वेदी का अपगत वेदी रहा। देखो देखो, 9वां चढ़ने वाला है, अपगत वेदी हो गया, फिर उसके बाद 10वें में गया तो उसका अंतर चालू हो गया, 11वें में गया फिर 10वें में आया, 9वें में एंटर होगा तो अंतर समाप्त हुआ, तो 9वें का अंतर कितना, 10 11 10, और 10 वाले का अंतर केवल 11, 11वें वाले का अंतर नहीं, क्योंकि हमारी मार्गणा कौन सी है, अपगत वेदी की, अन्य मार्गणाओं में हमने उनको लिया था अंतर में, दोबारा उसको श्रेणी चढ़ाई थी ओग में या अन्य मार्गणाओं में, ये बात हुई थी। देखो अभी हम यहां से पढ़ेंगे पेज नंबर 110। दो सौ सोलह का अर्थ फिर पढ़ती हूँ। उक्त दोनों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि ऊपर चढ़कर नीचे उतरने वाले जीव के अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर पाया जाता है। अभी उत्कृष्ट कहेंगे, उत्कृष्ट है ना अंतर्मूर्तम, जो जघन्य है वही उत्कृष्ट कहना पड़ेगा, उसके लिए कोई अलग से उसका प्रमाण नहीं होगा। उक्त दोनों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, यह सूत्र भी सुगम है। यानी जघन्य इज इक्वल टू उत्कृष्ट है यहाँ पर। यानी किसी का दसवा ग्यारहवा छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, ऐसा नहीं, सबका समान है। जो जघन्य वही उत्कृष्ट है, समझ में ही ना क्यों कहा ऐसा, क्योंकि उसका अपगत वेदी ही रहना है, तो वो जो जघन्य का अंतर बताया था वही हम उसको उत्कृष्ट अंतर कह सकते हैं। अब उवसंत कसाय वीदराग छदुमत्थानम अंतरम केवचिरम कालादोहो दी नाना जीवम पड़ुच्च जघन्य न एक समयम। नहीं सेम, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के बाद सबके परिणाम समान, सबके कांड घात ये सब समान, सबका काल समान, किसी के कम ज्यादा ऐसा नहीं होता है। तुमने देखा ग्यारहवें का नाना जीवों की अपेक्षा एक समय अंतर, जो हम उपशम श्रेणी का अंतर देखते हैं। उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थों का नाना जीवन की अपेक्षा, सॉरी अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा से जघन्य से एक समय अंतर होता है, यह सूत्र भी सुगम है। उपकस्य न वासपुदत्तम उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थों का नाना जीवन की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, क्योंकि एक बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर तथा नीचे उत्तर नीचे गिरकर उत्कर्ष से उपशम श्रेणी का वर्ष पृथक्त्व प्रमाण अंतर पाया जाता है। ये नाना जीवन की अपेक्षा अंतर बताया। एक सौ ग्यारह पेज पर आते हैं। एक जीवन पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम, उपशांत कषाय का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्यों, ये कौन सी मार्गणा है अपनी अपगत वेदी की, क्योंकि उपशांत कषाय वीतराग के ऊपर चढ़ने का अभाव है तथा नीचे गिरने पर भी अपगत वेद रूप से ही उपशांत कषाय गुणस्थान को प्राप्त होना संभव नहीं है, पुनः दोबारा प्राप्त हो अपगत वेदी रहते हुए संभव नहीं है। देखो जब अभी किसी को पीछे का नहीं पढ़ेंगे, केवल एक वाक्य पढ़ा, उपशांत कषाय का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं निरंतर है, अगर हम उसके मार्गणा पीछे नहीं लगाए अपगत वेदी की, तो इसमें से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसे कोई कहाँ लिखा है क्या लिखा है, अरे पर उसका आगे पीछे का किसका रेफरेंस आ रहा है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। दो सौ इक्कीस अनियट्ठी खवा सुहम खवा क्षीण कषाय वीदराग चदुमत्था अजोगी केवली ओगम। अपगत वेदियों में अनिवृत्तिकरण क्षपक, सूक्ष्म सांप्राय क्षपक, क्षीण कषाय वितराग छद्मस्थ और अयोगी केवली जीवों का अंतर ओग के समान है। ओग के समान ने क्या है, नाना जीवों की अपेक्षा एक समय से छह महीना, और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है क्योंकि क्षपक है। क्योंकि अपगत वेदत्व के प्रति ओघ प्ररूपणा और वेद मार्गणा की प्ररूपणा, इन दोनों में कोई अर्थ की विशेषता नहीं है। यहाँ वेद मार्गणा में अपगत वेदी कहा है ना, ओघ में भी यही बात होती है, वो अपगत वेदी है सारे। सजोगी केवली ओघम, सयोगी केवली का अंतर ओघ के समान है, यह सूत्र सुगम है। सयोग केवली का अंतर बताओ मनीषा बेन, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं, हमेशा ही उसमें पाए जाएंगे, बहुत अच्छा। और एक जीव की अपेक्षा यानी वो सयोगी से आयोगी होगा फिर वापस ये 6 मास आप नाना जीवन की सोच रहे थे, परंतु वहां भी नहीं, ना नाना जीवन की अपेक्षा अंतर है, ना एक जीव की अपेक्षा अंतर। याद नहीं रखना, सोचना बराबर, यहाँ कुछ भी चीजें याद नहीं रखनी, रटने से कुछ नहीं है, इसीलिए पहले से उसके अलग ही बात रखते सहयोगी। इस प्रकार वेद मार्गणा समाप्त हुई। तो अभी तक कौन कौन सी मार्गणा देखी याद है, गति, इंद्रिय, काय, योग और वेद, अब कषाय कहेंगे। अब कसायण वादेन कोध कसाई, मान कसाई, माय कसाई, लोह कसाई, सु मिच्छा दिट्ठी पहुड़ी जाव, सुम सांप्राय उवसमा खवाती मन जोगी भंगो। कषाय मार्गणा के अनुवाद से क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई और लोभ कषायों में मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्राय उपशामक और क्षपक तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवों का अंतर मनोयोगियों के समान है। अभी 10वां गुणस्थान केवल लोभ वालों के लिए ना, बाकी तो 9वें तक हो गए। शंका, मिथ्या दृष्टि, असंयत समय दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयतों का अंतर भले ही मनोयोगियों के समान रहा आवे, क्योंकि नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से समानता पाई जाती है। क्या कहना चाहते हैं, पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, इसमें वो क्रोध, मान, माय, लोभ वाले सारे जीव पाए जाएंगे, नाना जीव भी हमेशा पाए जाएंगे, और एक जीव की अपेक्षा अंतर क्यों नहीं होगा। मिथ्यात्व का अंतर हम कब कहते हैं, चौथे में गया और वापस आए, पर योग ने यहाँ कषाय, कषाय बदलते हैं, हाँ मन योग के समान है, जैसे योग पलटता है वैसे एक ही गुणस्थान में कषाय भी पलटते हैं। एक बात तो इसको, ये बात तो यहाँ स्वीकार है इसको। सासाधन समय दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों का भी अंतर मनोयोगियों के समान रहा वे, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्लोपम के असंख्यात भाग की अपेक्षा, वो तो घटित होगा, कोई ना कोई जीव उसमें आने वाला है, आया ही नहीं, क्रोधी होगा, मानी होगा, जो कुछ है, तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से समानता पाई जाती है। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं पाया जाएगा, क्योंकि एक जीव में तो उस पल्ले का असंख्या का भाग अंतर है और तीसरे गुणस्थान का अंतर्मूर्त अंतर है, फिर भी उसमें भी कषाय पलटेंगे नियम से, अलग अलग कषाय होते रहेंगे, इसलिए वहां पर भी समानता है। तीनों उपशामकों का भी अंतर मनोयोगियों के समान रहा है, क्योंकि नाना जीवों के जघन्य और उत्कृष्ट अंतर क्रमशः एक समय और वर्ष पृथकत्व काल से तथा एक जीव की अपेक्षा अंतर का अभाव होने से समानता पाई जाती है। एक जीव की अपेक्षा भी अंतर का अभाव है, क्योंकि उसी यानी वो बीच में अकषाय हो जाता है ना और वापस फिर कषाय में लौट आता है, तो उसका भी अंतर नहीं कहेंगे हम, और नीचे आकर फिर दोबारा चढ़ना है तो वो तो कषाय पलट जाएगी। किंतु अभी प्रश्न यहाँ से, उसका मुख्य प्रश्न यहाँ है, तीनों क्षपकों का अंतर मनोयोगियों के समान घटित नहीं होता, क्योंकि मनोयोगियों के समान कषायों का अंतर 6 मास नहीं पाया जाता। जैसे मनोयोगियों में 6 मास के अंतर से कोई ना कोई जीव क्षपक श्रेणी चढ़ेगा नाना जीवों की अपेक्षा, तो कहते ऐसा यहाँ नहीं होगा, ये उसका प्रश्न है। देखो इसके लिए उसने ऐसा क्यों पूछा, मनोयोगी की बात निकालो, 89 पेज निकालो। हाँ, 159 नंबर का सूत्र यहाँ लिखा है ना, नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से 6 मास है, एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। ये ओक के समान यहाँ पर भी घटित किया है। तो उसके लिए यहाँ इसका कहना है, मैंने 189 पेज पर बताया, 159 नंबर का सूत्र वहां ये बात बताई थी। और जैसे ओग में भी बताया था ना 6 महीने का, तो कहते किसी एक ही कषाय के साथ वो 6 महीने का अंतर कैसे घटित होगा, ये उनका कहना है। आचार्य कहते प्रतिशंका, ये प्रतिशंका के पहले आचार्य लिखना आवश्यक है, क्योंकि ये पेंसिल से लिखो हमारे लिए, क्योंकि शंका आचार्य उसको उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यह कैसे जाना जाता है। अब शंकाकार प्रति समाधान कर रहा है, यह आचार्य का समाधान नहीं है, शंकाकार का कहना है। विवक्षित कषाय से व्यतिरिक्त शेष 3 कषायों के द्वारा 1, 2 और 3 संयोग के क्रम से शपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों का बहुत अंतर पाया जाता है, ये उनका क्या कहना है। क्रोध को छोड़ो, कोई मान से चढ़ा, कोई माया से चढ़ा, कोई लोभ से चढ़ा, तो क्रोध का दोबारा क्रोध से चढ़ने वाले का अंतर ज्यादा हो जाएगा 6 महीने से, ये उनका कहना है। अब आचार्य समाधान करते, नीचे का समाधान आचार्य ने किया है, यह कोई दोष नहीं क्योंकि योग के साथ विवक्षित मनोयोगियों के समान कथन अन्यथा बन नहीं सकता है, तथा चारों कषायों का उत्कृष्ट अंतर 6 मास मात्र ही सिद्ध होता है। ऐसा मानने पर पाहुर सूत्र के साथ व्यभिचार भी नहीं आता, व्यभिचार नहीं, वो तो विरोध भी नहीं आता है, दोष भी नहीं आता है, क्योंकि उसका उपदेश भिन्न है। जैसे मनोयोग के साथ भी 6 महीने का है और ओग में भी बताया, वैसे यहाँ पर भी है। देखो वेद में क्यों अलग बात थी, क्योंकि वेद में तो वो अति अप्रशस्त थे, अभी क्रोध मान माया लोभ में तो सारे समान ही, सेम 6 महीने है, यानी चारों ही कषाय वाले कोई ना कोई तो जीव चढ़ते ही रहेंगे। अब पेज नंबर 113, ओ कसायसु वसंत कसाय विदराग चदुमत्थान अंतरम केवचिर। अभी अकषाय की बात कर रहे हैं, अभी तो कषाय की बात कर रहे थे, अकषाय की बात कर रहे हैं अभी। उपशांत कषाय वसंत कसाय विदराग चदुमत्थान अंतरम केवचिरम कालादो हो दी नाना जीवम पड़ुच जहने न एक समय। ओ कषायो में उपशांत कषाय वितराग छद्मस्थों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है, यह सूत्र है। क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ने वालों का जो अंतर है एक समय से वर्ष पृथक का, उपकस्यन वास पुधत्तम, उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक है, क्योंकि यह गुणस्थान उपशम श्रेणी का विषयभूत है और उपशमकों का उत्कृष्ट अंतर इतना ही बतलाया गया है, ये तो हमने बहुत बार देखा था। एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम, उपशांत कषाय वितराग छद्मस्थ का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि अकषाय में से फिर कषाय होना पड़ेगा उसको, उसका अंतर घटित नहीं होगा, क्योंकि नीचे उतर कर अकषायता का कषाय हुआ, वो कषाय करना, अकषायता का विनाश हुए बिना, यानी कषाय हुआ फिर दोबारा पुनः उपशांत पर्याय के परिणमन का अभाव है, यानी दोबारा उसके जो तो स्वयं का उदय होगा, फिर नीचे आएगा छठे तक, फिर बाद में फिर श्रेणी चढ़ेगा, तो उसकी वो मार्गणा नहीं रहेगी। क्षीण कसाय वीदराग छदुमत्था अजोगी केवली ओगम, ये नाना जीवों की अपेक्षा बताएंगे यहाँ पर। अकषाय जीवों में काषाय हुआ, वो कषाय करना, क्षीण कषाय वीतराग छदमस्थ और अयोगी केवली जिनों का अंतर ओघ के समान है। ओघ के समान है नाना जीवन की अपेक्षा कितना है, एक समय से 6 महीना, और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। सजोगी केवली ओघम, सयोगी केवली जीवों का अंतर ओघ के समान है, ये दोनों ही सूत्र सुगम है। सयोगी केवली में नाना जीवन की अपेक्षा भी अंतर नहीं, एक जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं। इस प्रकार कषाय मार्गणा समाप्त हुई, जल्दी समाप्त कर दी है। अब ज्ञान मार्गणा के बाद 114 नंबर के पेज पर नानानुवादेन मदि अन्नानी सुद अन्नानी विभंगनानी सु मिच्छादिठिनम अंतरम केवचिरम कालादोहोदी नाना एक जीवम पड़ुच्चनस्य अंतरम निरंतरम। देखो क्या कहना चाहते हैं, अभी अपेक्षा कौन सी है, मति अज्ञानी, तो मति अज्ञानी के गुणस्थान पहला और दूसरा, पहले दो गुणस्थानों में मति अज्ञान है, मिश्र ज्ञान होता है। तो देखो अभी हम ज्ञान की अपेक्षा मत लगा लो, तो हमने मिथ्या दृष्टि का अंतर कैसा देखा था, अन्य गुणस्थान में गया और वापस आया, अन्य गुणस्थान में आएगा तो सम्यक ज्ञानी हो जाएगा, उसका अंतर नहीं। और नाना जीवों की अपेक्षा भी सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसमें हमेशा ही पाए जाएंगे जीव। हर में एक बार देखो, हाँ दो ही गुणस्थान, अभी दूसरे से भी पहले में आकर फिर दूसरे में नहीं जा सकता है, वहां भी उसका भी अंतर नहीं कहेंगे। नाना जीवन की अपेक्षा भी देखते हैं। तो ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से मत्स्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी और विभंग ज्ञानी जीवों में मिथ्या दृष्टियों का अंतरकाल कितने तक होता है, काल कितने काल तक होता है, नाना और जीवों की और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। क्योंकि इन तीनों अज्ञान वाले मिथ्या दृष्टियों का अविच्छिन्न प्रवाह होने से, अविच्छिन्न नहीं, वो नाना जीवन की अपेक्षा लगातार उसमें जीव होते ही होते, गुणस्थान के परिवर्तन का अभाव है, अब कहते शासन सम्मादिच्छिन्न अंतरम केवचिरम कालादो होगी नाना जीवम पड़ुच्चो ओघम। तीनों अज्ञान वाले सासाधन समय दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है, वो तो उसमें कोई भेद नहीं, सासाधन वाले कहो या मिथ्या ज्ञान दृष्टि कहो, नाना जीव उसमें आते रहेंगे, उसमें तो अंतर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्लवपम के असंख्यातवे भाग की अपेक्षा समानता है। एक जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम, तीनों अज्ञान वाले सासाधन सम्यक दृष्टियों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, ऐसा क्यों कहा, आपको बताना, एक्सप्लेन करना है। हाँ मति ज्ञान हो जाएगा, मार्गणा तो उसकी नहीं रहेगी, क्योंकि बीच में सम्यक तो प्राप्त हुए बिना फिर दोबारा सासाधन में नहीं आ सकता। इसे नाना जीवन की अपेक्षा अंतर बताया, जीव की अपेक्षा अंतर नहीं बताया, क्योंकि प्ररूपणा किए जाने वाले ज्ञानों से भिन्न ज्ञानों को प्राप्त होने पर विवक्षित मार्गणा का विनाश हो जाता है। भिन्न ज्ञान है मति श्रुत ज्ञान, जिसको हम सुमति सुश्रुत कहते हैं, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। अभी सम्यक दृष्टियों की बात करेंगे। आभिनिबोध्य, आभिनिबोधि का अर्थ होता है सुमति ज्ञान, मति ज्ञान। सुद ओहि नानी सु असंजत सम्मादिच्छिन्नम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवन पड़ुच्च नथी अंतरम निरंतरम, क्योंकि चौथा गुणस्थान निरंतर गुणस्थान है नाना जीवन की अपेक्षा। मेरा प्रश्न, एक जीव की अपेक्षा अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मनीषा बेन? नहीं, ये अभी सुमति ज्ञान चौथा गुणस्थान है, कैसा पड़ेगा? नाना जीवन की अपेक्षा निरंतर है, एक जीव की अपेक्षा दूसरे ने ऊपर के, यानी उसको समय दृष्टि रखना है। पांचवें में जाके लौटा, वही वही अंतर, तो अंतर तो गुणस्थान की अपेक्षा लगाना है यहाँ पर। चौथे का ही अंतर कब होगा? पहले हम क्या करते थे ओग में, उसको पहले में भेजो, तीसरे में भेजो, कहीं पर भी भेजो, पांचवे में भेजो। यहाँ क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन है उसका, तो सम्यक को पड़े भी ना ऊपर के गुणस्थान में भेजकर वापस लाओ तो चले। हाँ, चौथे के ऊपर। जैसे अभी देखो, ओग में हमने सम्यक का अंतर कितना देखा, अभी नपुसक वेद में कितना देखा चौथे का अंतर, अर्ध पुद्गल पर आओ, चौथे का अंतर मिथ्या तो में इतना भेजा, अभी यहाँ चौथे का अंतर क्या करना पड़ेगा? चौथे का मिथ्या तो नहीं भेज सकते, पांचवे छठे सातवे में रखो उसको, संयम में रखो, और फिर वापस संयम में मरा तो भी चौथे में तो आना ही है उसको। ख्याल में आती है बात? तो अर्लीस्ट चौथा कब छूट सकता है? आठवीं साल के बाद, मान लेते हैं चौथे के साथ जन्मा कोई, और फिर आठवीं साल के बाद उसने संयम प्राप्त किया और करोड़ पूर्व तक रहा और बाद में मरकर देह हुआ, चौथे में गया वापस, तो चौथे का अंतर इतना इस तरह से घटित होगा। अभी हमने पढ़ा नहीं, फिर भी हमको सोचना इस तरह से। अब देखो यहाँ पढ़ेंगे, नीचे हिंदी में फिर पढ़ते, अभी निबोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान वालों में असंयत, वो असंयम बराबर करा, अ के ऊपर बिंदी आ गई, स के ऊपर चाहिए। असंयत समय दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं निरंतर है, हमने देखा था चौथा पांचवा छठा सातवा निरंतर गुणस्थान है, क्योंकि तीन ज्ञान वाले असंयत समय दृष्टियों का सर्वकाल अविच्छिन्न प्रवाह रहता है। यानी अवधि ज्ञानी समय दृष्टि भी हमेशा रहेगी, देवनार की तो रहेगी ही रहेगी, अवधि ज्ञानी होते वो। एक जीवन पड़ुच्च जहन्य न अंतोमोत्तम, पेज नंबर 115। तीनों ज्ञान वाले असंयत समय दृष्टियों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे एक असंयत समय दृष्टि जीव संयमा संयम को प्राप्त हुआ, अभी नीचे के गुणस्थानों में नहीं ले जा सकते क्योंकि वह अज्ञानी हो जाएगा, ज्ञान बदल जाएगा, वहां पर सर्व लघु अंतर्मूर्त काल रह करके फिर भी असंयत समय दृष्टि हो गया, इस प्रकार अंतर्मूर्त प्रमाण अंतर लब्ध हुआ। उपकस्तेना पूर्वकोड़ी देशुणा, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है। देखा है ना, अभी हमने सोचा था ना, पहले पढ़ने के पहले सोच लिया था। तो मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई जीव पूर्व कोटि की आयु स्थिति वाले, अच्छा वो इसमें जन्म ले, बहुत अच्छा, हमने तो वो आठवां साल में लिखा था, यहाँ तो समूर्छन में ले सकते हैं, वो भी पूर्व कोटि वाला हो सकता है। पूर्व कोटि की आयु स्थिति वाले संगी समूर्छिम पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ, यानी चार अंतर्मूर्त में गए उसके, और अंतर्मूर्त से विशुद्ध हो, संयमा संयम को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ। समझ में आई? चौथे में अंतर्मूर्त रहकर पांचवे में गया, नहीं तो मनुष्य को जाने के लिए उसको तो 8 साल गिनना पड़ता, हमने वैसा सोचा था, वो यहाँ है, यहाँ तो समूर्छन को लिया। पूर्व कोटि काल प्रमाण संयमा संयम को पालन कर मरा और देव हुआ, देव होते ही चौथा गुणस्थान में लौट कर आया। इस प्रकार चार अंतर्मूर्तों से कम पूर्व कोटि प्रमाण मति शुद्ध ज्ञानी असंयत समय दृष्टि का अंतर लब्ध हुआ। अब अवधि ज्ञानी असंयत समय दृष्टि का अंतर कहते हैं। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक जीव संगी सम्मूर्छिम पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। पश्चात अंतर्मूर्त से अवधि ज्ञानी हो गया। पश्चात अंतर्मूर्त से अवधि ज्ञानी हो गया, यानी उसमें और एक अंतर्मूर्त बढ़ाया। अंतर्मूर्त अवधि ज्ञान के साथ रहकर यहाँ पांचवा आंकड़ा लिखना, संयमा संयम को प्राप्त हुआ। ये अंतर्मूर्त अवधि ज्ञान के साथ रहकर है ना, उसके लिए पांचवा आंकड़ा लिखना, बाद में संयमा संयम को प्राप्त हुआ। पूर्व कोटि प्रमाण सीमा संयम को पालन कर मरा और देव हो गया। इस प्रकार 5 अंतर्मूर्तों से कम पूर्व कोटि काल प्रमाण अंतर लब्ध हुआ। अभी देव सम्यक के साथ देव है तो जन्म के समय से अवधि ज्ञानी है, इसलिए ऐसा लिया उसको। पेज नंबर 116। संजदा संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्छन अस्थि अंतरम निरंतरम। मति ज्ञानादि तीनों ज्ञान वाले संयता संयतों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। यह सूत्र सुगम है, ये तो आसान है। एक जीवम पड़ुच्छ जहन्येन अंतर्मूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। यह सूत्र भी सुगम है क्योंकि ओग प्ररूपणा से इसका कोई भेद नहीं है, क्योंकि संहिता संहित है ना, चौथे में जाके वापस आया या संयम धारण करके वापस आया तो उसका अंतर्मूर्त होगा। तो एक जीव की अपेक्षा जगन्यंतर अंतर्मूर्त। उक्कस्य न छावट्ठी सागरवमानी चादिरे यानी, तीनों ज्ञान वाले संयता संयतों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागरोपम है। अब देखो, मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष का होकर संयमा संयम और वेदक सम्यक को एक साथ प्राप्त हुआ, पुनः अंतर्मूर से संयम को प्राप्त करके अंतर को प्राप्त हो, संयम के साथ पूर्व कोटि प्रमाण काल बिताकर 33 सागरोपम के आयु स्थिति वाले अनुत्तर विमानवासी देवों में उत्पन्न हुआ, वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, तब क्षायिक सम्यक्त को धारण कर और संयम को परिपालन कर पुनः एक समय कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। पहली बार 33 लिया और बाद में एक समय कम लिया। हाँ अरविंद भाई, वही तो, पहले बार 33 सागर माइनस एक समय लेना पड़ेगा। ऊपर देखते हैं, अंतमूर्तेन संजम गंतून अंतरीय संजमेन पूर्वकोटिं गमीय अनुत्तर देवेशु 33 પૃથ્વી એસુ ઉવણનો તદો છુદો પૂવો કોળાવું ગેસુ મનુષ્યસુ ઉવણનો ખયમ પઠવ્ય સંજમ અનુપાલ્ય પુણો સમઉણ તેત્રીસ સાગરોપ સાગરોમાં આવ્યું પૃથ્વી એસુ દેવસુ ઉપનો તદો છુદો પૂવો કોળાવું ગેસુ મનુષ્યસુ ઉવણનો કૈત્રી ગડબડ એમ જરા દેખતે હે पहले यहाँ की पांच पढ़ लेते। पहले उसको संयम को प्राप्त कराकर तैतीस सागरों में उत्पन्न कराया, वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि के आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। तब क्षायिक समय को धारण कर और संयम को परिपालन कर पुनः एक समय कम तैतीस सागरों की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, वहां से च्युत हो पूर्व कोटि के आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और वहां दीर्घ काल तक रहकर चौथे में संयमा संयम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ, पश्चात संयम को प्राप्त हुआ। प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस्रों परिवर्तनों को करके फिर क्षपक श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत हुआ। इनमें ऊपर के क्षपक श्रेणी संबंधी छह अंतर्मूर्त मिलाए। इस प्रकार आठ वर्ष और ग्यारह अंतर्मूर्तों से कम तीन पूर्व कोटियों से अधिक शासर सागरोपम मतिशुद्ध ज्ञान वाले संहिता संहितों का उत्कृष्ट अंतर होता है। फिर दूसरी बार एक समय कम वाला क्यों किया था?
पहले लेना था ना।
ऐसा लगता है अपने को।
पहले वेदा समय के था, साइड नहीं था, बाद में साइड हुआ ना। इसलिए उसको वेदा समय को तो साथ देखने सदर भी गया।
बत्तीस सागर पासून बत्तीस सागर और एक समय से लेकर आगे सर्वार्थ सिद्धी वचन एकामध्ये मिळेल कदाचित एक आठ याला ज्याला म्हटलंय ना की अंतरमध्येच बघायला पाहिजे। आठ वर्ष और ग्यारह अंतर्मुहूर्तों से कम तीन पूर्व कोटियों से अधिक 66 सागरों को मैंने पहला भाव में आठ वर्ष कम किए पूर्व कोटि वाला, फिर 33 सागर वाला लिया, फिर पूर्व कोटि वाला लिया, फिर 33 सागर एक समय कम लिया, फिर पूर्व कोटि वाला लिया। सब जगह 500 में केवल सर्वार सिद्धि नियम से मुक्त जाते हैं। हाँ, यानी बाजू वाले बिना मोक्ष गए भी सर्वार सिद्धि वाले तो नियम से जाएंगे, ये तो अन्य अनुत्तर वाला हो गया, ऐसा लेना उसमें। ठीक, वहां कुछ हम गड़बड़ी नहीं करेंगे। हाँ देखो, 117 पेज पर आ गए। इस प्रकार से अवधि ज्ञानी संहिता संयत का भी उत्कृष्ट अंतर जानना चाहिए। कुछ रह गया? एक समय था इसलिए वो तो दीर्घ काल रहकर फिर बाद में सेमा सेमू को प्राप्त वाले। ठीक ठीक, अरविंद भाई ने कहा वो बराबर है। देखो आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ रहे कह रहे थे,
छह अंतर्मुहूर्त जो बताए श्रेणी संबंधित छह
अंतर्मुहूर्त। हाँ, आठवां नौवां दसवां बारवां तेरवां चौदहवां शपक श्रेणी, तेरवा चौदवा भी गिनना ना मोक्ष भेजने के पहले, हो सकता है ना, जरूरी नहीं ज्यादा टाइम रखने की, मिनिमम अंतर्मुहूर्त उसका काल है। नहीं नहीं, उसका कारण बताते देखो। नहीं, अब समझ में आ गई बात। देखो फिर से निकालना 116 पेज। पहले आठ वर्ष का होकर संयमा सेम और वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ। अब संयमा सेम के बाद उसको अगर संयमी नहीं बनाएंगे, आप कहेंगे चौथे में लाकर अंतर करो ना, वो 66 सागर घटित नहीं होता, तो उसके लिए संयमी बनाया, तो अंतर्मुहूर्त में संयमी हुआ उसको, संयम को अंतर को प्राप्त हो, संयम के साथ पूर्व कोटि प्रमाण काल बिताकर 33 सागरों भूमि के आयु वाली अनंतर विमानवासी देव में उत्पन्न हुआ। पूरे 33 सागर लिए। एक बात अभी उसका कारण समझो, वहां से च्युत हो पूर्व कोटि के आयु वाले मनुष्य में उत्पन्न हुआ, तब क्षायिक समय को धारण कर और संयम को परिपालन कर, यानी संयम जल्दी धारण किया उसने, 33 सागर वाला जल्दी संयम धारण करता है। वो सर्वार सिद्धि वाला जाता है, नहीं बाजू वालों में भी होती है ना मैक्सिमम आयु, बाजू के देवों में भी मैक्सिमम आयु 33 सागर की हो सकती है, यानी समय कम 32 सागर से लेकर 33 सागर कुछ भी हो सकता है, और सर्वार सिद्धि वालों के सारों की आयु 33 सागर की। वो वहां पर भी होती है ना बाजू वालों में। हाँ हाँ, पहली अभी यानी जल्दी संयम को धारण करता है। और अभी 33 सागर और एक समय वाला क्या है, लंबे काल तक चौथे में रहा, फिर पांचवे में रहा और लास्ट में जाके संयम ही हुआ। इसलिए देखो फिर वहाँ फिर क्षायिक करके अन्य अनुत्तरम, यानी सर्वार सिद्धि बिना वाला। यानी सर्वार सिद्धि को छोड़कर वहां उत्पन्न हुआ। अब देखो वहां से फिर लास्ट में जब उत्पन्न हुआ ना, तो दीर्घ काल तक रहकर सहमा सेम को प्राप्त हुआ और लास्ट एक अंतर मुहूर्त में संयम धारण किया और संयम धारण करके फिर क्षपक श्रेणी चढ़ के मोक्ष हो गया। इसलिए क्षपणा भी उसके पहले भव में कर दी, समझो ना। तीन पूर्व कोटिया लिया और बीच में 233 सागर ले लिया। नहीं, वो सर्वार सिद्धि वाला 33 सागर, यानी अभी कन्फ्यूजन दूर हुआ ना। ये पेज नंबर 117 दूसरा पैराग्राफ। इसी प्रकार से अवधि ज्ञानी संहिता संयत का भी उत्कृष्ट अंतर जानना चाहिए। विशेष बात यह है कि अभिनिबोधी ज्ञानी के आदि के अंतर मूल से प्रारंभ करके अंतर को प्राप्त कराकर 12 अंतर मूलों से अधिक 8 वर्ष से कम 3 पूर्व कोटियों से साधिक शास्त्र सागरोपम अंतर होता है, ऐसा कहना चाहिए। वहां 11 अंतर मूर्त लिया या 12 लिया, क्योंकि अवधि ज्ञान बाद में प्राप्त कराए। अब शंकाकार पूछता है, उपर्युक्त व्याख्यान ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकार अल्प अंतर की प्ररूपणा होती है, अतः दीर्घ अंतर के लिए अन्य प्ररूपणा की जाती है। अभी वो स्वयं ही प्ररूपणा बता रहे हैं। मोहकर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक जीव संगी समूर्छिम पर्याप्तकों में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक और सहिमा सेम को एक साथ प्राप्त हुआ, सहिमा सेम के साथ अंतर्मुत रहकर असंयत समय दृष्टि हो गया, पूर्व कोटि काल बिताकर 13 सागरोपम की आयु वाले लांतो कापिष्ठ देवों में उत्पन्न हुआ, पश्चात वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, वहां संयम को परिपालन कर 22 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, वहां पर संयम को परिपालन कर और क्षायिक सम्यक्त को धारण कर 31 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात वहां से च्युत होकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और संसार के अंतर्मूर्त अवशेष रहने पर सेमा सेम को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर्लब्ध हुआ, पश्चात विशुद्ध हो अप्रमत्त संयत हुआ, पुनः अप्रमत्त प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस्रों परिवर्तनाओं को करके क्षपक श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत हुआ। इनमें ऊपर के क्षपक श्रेणी संबंधी 6 अंतर्मूर्त और मिलाए, इस प्रकार 14 अंतर्मूर्तों से कम 4 पूर्व कोटियों से साधिक शास्त्र सागरोपम उत्कृष्ट अंतर होता है। इसी प्रकार से अवधि ज्ञानी संयत का भी उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए। विशेष बात यह कि अभिनिबोधिक ज्ञान के आदि के अंतर मूल से आदि करके अंतर को प्राप्त कराना चाहिए। पुनः 15 अंतर मूर्तों से कम 4 पूर्व कोटियों से साधिक 66 सागरोपम उत्पन्न करना चाहिए। ये सब उन्होंने घटित करके बताए तो शंका चल रही है। समाधान, हाँ, पूर्वोक्त शंका में बतलाया गया यह अंतरकाल घटित नहीं होता क्योंकि संगी समूर्छिम पर्याप्तकों में संयमा संयम के समान अवधि ज्ञान और उपशम सम्यक्त्व की संभावना का अभाव है। यानी उसमें संयमा संयम हो सकता है परंतु अवधि ज्ञान और उपशम सम्यक्त्व नहीं हो सकता। शंकाकार पूछता है, यह कैसे जाना कि संगी समूर्छिम पर्याप्त जीवों में अवधि ज्ञान और उपशम सम्यक्त्व का अभाव है? उसका समाधान, पंचेंद्रियों में दर्शन मोह का उपशमन करता हुआ गर्भोत्पन्न जीवों में ही उपशमन करता है, समूर्छिमों में नहीं। इस प्रकार के चूलिका सूत्र से जाना जाता है। हमने देखा ना, दर्शन मोह का उपशमन गर्भजों में होता है। फिर शंकाकार पूछता है, संगी समूर्छन जीवों में अवधि ज्ञान का अभाव कैसे जाना जाता है? क्योंकि समूर्छिमों में अवधि ज्ञान को उत्पन्न करा के अंतर के प्ररूपण करने वाले आचार्यों का अभाव है, अर्थात किसी भी आचार्य ने इस प्रकार अंतर की प्ररूपणा नहीं की। शंकाकार कहते, संगी समूर्छन जीवों में अवधि ज्ञान का अभाव भले ही रहा है, किंतु ओग प्ररूपणा में कहे गए और संगी समूर्छन जीवों में संभव आभिनिबोधिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान का ही अंतर है, ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि उनमें उत्पन्न होने वाले जीवों के इस प्रकार संभव नहीं है। शंकाकार पूछता, यह भी कैसे जाना जाता है? क्योंकि इस प्रकार का व्याख्यान नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। अथवा जान करके व्याख्यान करना चाहिए थी किसी ने, वो लिया है असंयत के लिए, अंतर कहते हैं ना, उसमें लिया है। संयमी तो बाद में उसको कराया, पहले देव में भेजा, फिर मनुष्य होकर फिर संयमी बनाया, फिर ऊपर भेजा। हाँ, और फिर उसको लांतो काफिष्ट तक ही उत्पन्न कराया ना।
संयम को नहीं,
अरे नहीं,
संयम के बाद
में
अवधि ज्ञान
नहीं नहीं उन्होंने वो अवधि ज्ञान होता है नहीं, उन्होंने ऐसा कहा अवधि ज्ञान उत्पन्न करा के इस प्रकार की प्ररूपणा नहीं की, इतना ही उनका कहना है। वैसे तो उन्होंने बाद में देव यानी ये वाली प्ररूपणा उन्होंने नहीं की है, बस इतना ही उनको कहना है। अवधि ज्ञान तो वहां उत्पन्न किया है, अभाव है वहां कह दिया और यहाँ उसका स्वीकार लिया है उन्होंने। हाँ पेज 115 पर अवधि ज्ञान उत्पन्न कराया है। अथवा करके दूसरा ऑप्शन दिया, अथवा जान करके इसका व्याख्यान करना चाहिए, यानी उसका कोई अन्य कारण हो सकता है, ये भी उन्होंने वहां बता दिया। ये भी हो सकता है ना कि ऑलरेडी उसने पहले प्राप्त करके उसको इतना उत्कृष्ट काल नहीं होता होगा, क्योंकि 28 की सत्ता वाला आया है, यानी पहले में उसने वैदिक समय को कभी प्राप्त किया था या ऑप्शन से गिरकर यहाँ आया था, ऐसा कुछ उसका संबंध होना चाहिए। उसको क्यों नहीं लिया, उसका अन्य भी कुछ कारण हो सकता है, यानी वो अंतर में उसको नहीं लिया, उसमें होता है वो तो उन्होंने चौथे के साथ कबूल कर दिया है 115 पेज पर, इसीलिए अथवा जान करके कहना चाहिए ऐसे बता रहे हैं। उसमें नहीं होगा शंका, ये नीचे की शंका पेज नंबर 119 पर नीचे की शंका है ना, गर्भोत्पन्न जीवों में व्यतीत किए गए 48 दिनों में, तीन पक्ष और तीन दिन थे ना, अवधि ज्ञान उत्पन्न करके अंतर को प्राप्त क्यों नहीं कराया? नहीं, क्योंकि उनमें भी अवधि ज्ञान की संभवता की प्ररूपणा करने वाले व्याख्यानाचार्यों का अभाव है। पमत्त संजदानम अंतरम के वचिरम कालाद होदी नाना जीवम पड़ुच्छ नत्य अंतरम निरंतरम, तीनों ज्ञान वाले प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है निरंतर है, यह सूत्र सुगम है 120 पेज। एक जीवन पड़ुच्च जहन्येन अंतोमुहूर्तम, तीनों ज्ञान वाले प्रमत्त और अप्रमत्त संयतों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है, जैसे प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीव विवक्षित ज्ञान के साथ अन्य गुणस्थान को जाकर और पुनः पलटकर सर्व जघन्य काल से उसी गुणस्थान को आए, इस प्रकार अंतर्मूल प्रमाण जघन्य अंतर लब्ध हुआ। तो छठे वाला सातवें में जाकर लौटा, सातवें वाला उपशम श्रेणी चढ़कर फिर लौटा, ऐसे हमने पहले देखा था। उपकसेन 33 सागरोमाणी साधिरियाणी, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागरोपम है। जैसे कोई एक प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत कषाय हो करके फिर भी सूक्ष्म सांप्राय अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण और अप्रमत्त संयत हुआ तथा गुणस्थान का कालक्षय हो जाने से मरण को प्राप्त हो, एक समय कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ। पश्चात वहां से च्युत हो पूर्वकोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और जीवन के अंतर्मूल प्रमाण अवशिष्ट रहने पर प्रमत संयत हुआ। देखो पूरा 33 सागर वाला जल्दी संयम धारण करता है, इसलिए इसको यहाँ एक समय कम वाला लिया। इनमें ऊपर के 6 अंतर्मूर्त और मिलाए, अंतर के भीतरी 9 अंतरों में से बाहरी 8 अंतर्मूर्तों को घटा देने पर एक अंतर्मूर्त अवशिष्ट रहता है। ऐसे एक अंतर्मूर्त से अधिक पूर्व कोटि से साधिक 33 सागरूपम प्रमाण उत्कृष्ट अंतर होता है। इस प्रकार से यह अंतर के विशेष को नहीं जोड़ करके कहा है। अंतर का विशेष यानी अंतर्मूर्त के प्रमाण अलग अलग है, उसकी अपेक्षा छोड़कर यह बात बताई। विशेष के जोड़ जाने पर अंतर के आभ्यंतर से अप्रमत्त संयत का 2 काल और उनके अंतर का बाहरी 1 क्षपक श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत का काल होता है। देखो पहले कैसा लिया था उन्होंने, यानी छठे का काल कैसे लिया, छठे से सातवें में गया, आठवें में गया, नौवें, दसवें, ग्यारहवें, दसवें, नौवें, आठवें, सातवें में ही मरकर देह हुआ। प्रमत्त का अंतर, प्रमत्त से अप्रमत्त होकर 7, 8, 9, 10, 11, 10, 9, 8, 7 में ही मरा, प्रमत्त को आया ही नहीं, ऐसा जीव लिया। और फिर 33 सागर माइनस एक समय, फिर आया चौथे पांचवें में भले रहा, संयम बाद में अंतम अंतर्मूर्त में प्राप्त किया। यानी वो छठे से दुगुना, यानी छठे से आधा सातवें का काल होता है ना, तो 2 7 मिलकर 1 छठी का होता है। इस तरह से उसके कुछ उन्होंने कम करना चाहे, यहाँ लिखा ना, देखो इसको पढ़ते हैं यहाँ पर, ये इसको कल पढ़ेंगे, ये उसकी विशेषता जो बताए ना, यहीं से लेंगे 240 से 120 पेज से ही दोबारा लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो अंतर्मूर्तों की विशेषता उनका प्रमाण अलग से बताना चाहते हैं। केवल अंतर्मूर्त गिनने से कुछ नहीं, कुछ अंतर्मूर्त छोटे बड़े उसकी बात वहां करने जा रहे हैं, ये बात हम कल ले लेंगे। 120 पेज से 240 सूत्र से दोबारा कल ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तकनम सदा देत हो।